एक तोहफा सूरज की महारानी के नाम, कोहिनूर का शाप भाग एक। जो कभी दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, वह आज एक छोटा सा टापू रह गया है जो खुद में सिमटता जा रहा है। एम्पायर से ब्रेग्जिट का यह सफरनामा 4 अंकों में। संजय खाती की रिपोर्ट। 6 अप्रैल 1850 के दिन एचएमएस मीडिया जब बॉम्बे हार्बर से लंदन के सफर पर रवाना हुआ, तो उसके कार्गो में एक बेहद गोपनीय बॉक्स भी शामिल था। सील बंद तिजोरी में महफूज इस पार्सल की निगरानी में ब्रिटिश अफसर और सिपाही तैनात थे। एक लंबा जोखिम भरा सफर सामने था और मुसीबतों का सिलसिला भी। पहले शिप में हैजा फैला, फिर मॉरिशस के पास उसे तोप से उड़ाने की धमकी मिली, और फिर ऐसे तूफान ने घेर लिया जो 12 घंटे तक उसे तिनके की तरह पटकता रहा। आखिरकार 29 जून को मेडिया लंदन के पोर्ट पर जा लगा, और इस तरह दुनिया के इतिहास का शायद सबसे कीमती तोहफा ब्रिटिश साम्राज्य की महारानी अलेक्जेंड्रीना विक्टोरिया के हाथों में पहुंच गया, जिसे कोहिनूर हीरे के नाम से जाना जाता है। कोहिनूर न सिर्फ इस खतरनाक सफर से गुजरा था, बल्कि उसकी पूरी जीवन कथा साजिश, लालच और खून खराबे की लंबी दास्तान थी। उसकी दिलफरेब चमक के पीछे काली परछाइयों का ऐसा सिलसिला था कि दुनिया उसे शापित हीरा मानने लगी थी। यानी जिसे भी कोहिनूर मिला, उसकी बर्बादी का इंतजाम हो गया। तो क्या 1850 की उन गर्मियों में ब्रिटेन ने भी कोहिनूर के उत्साह को जाने अनजाने ओढ़ लिया? दुनिया में रोमन, तुर्क और रूस जैसे महान साम्राज्य हुए हैं, लेकिन ब्रिटिश एम्पायर जैसा कोई नहीं हुआ। यूरोप के एक ठंडे धुंध भरे टापू से उभरे इस साम्राज्य ने अपने बेहतरीन वक्त में एक चौथाई दुनिया को निगल लिया था। आज जो दुनिया का राजनीतिक नक्शा है, जिंदगी के तरीके हैं, सब पर ब्रिटेन की छाप है। हम सब ब्रिटेन के गढ़े हुए लोग हैं। इसी दौर की यह कहावत लोकप्रिय हुई कि ब्रिटिश साम्राज्य में सूरज कभी नहीं डूबता। यहां पहले नक्शे में आप 1920 के उस एम्पायर का फैलाव देख सकते हैं, लेकिन यह पूरी तस्वीर नहीं है। अलग-अलग दौर में और भी कई भूभागों पर ब्रिटेन का दबदबा रहा। कई ऐसे देश थे जिन्हें ब्रिटिश कॉलोनी नहीं कहा गया। वे सुरक्षित इलाके थे, यानी वहां ब्रिटेन पर्दे के पीछे से राज कर रहा था। यह महान एम्पायर 300 साल तक फैलता रहा, और एक वक्त था जब इसे शाश्वत मान लिया गया। लेकिन 1947 में भारत की आजादी के महज 21 साल के भीतर यह तेजी से सिमटता हुआ गायब हो गया। जैसा अभूतपूर्व यह विस्तार था, उससे हैरत अंगेज यह पतन था। दूसरे नक्शे में आप जो देख रहे हैं, वह आज का ब्रिटेन है। यह इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड से मिलकर बना यूनाइटेड किंगडम है, जो एम्पायर से पहले का था। यह तीसरा नक्शा भविष्य का एक अनुमान है। अकेला इंग्लैंड, जो बहुत मुमकिन है आगे चलकर बचा रह जाए, क्योंकि ब्रेग्जिट यानी यूरोपीय यूनियन से जल्द होने जा रहा उसका तलाक उसके लिए विघटन के भी आसार पैदा कर रहा है। उत्थान और पतन की यह अभूतपूर्व कहानी कैसे और क्यों चली? क्यों आज ब्रिटेन अपनी मौत का सामना कर रहा है? कोहिनूर के शाप का मिथक कैसे सच साबित हो रहा है? यह हम जल्द ही देखेंगे। इस तरह फीका पड़ता गया रोशनी का पहाड़। वक्त के साथ एक और मिथक कोहिनूर से जुड़ गया, यह कि इसके शाप से बचना है तो किसी महिला को ही इसे धारण करना चाहिए, लिहाजा यह ब्रिटिश राजघराने के किसी पुरुष के पास नहीं गया और क्वीन या प्रिंसेस के बीच आता जाता रहा। आखिर में इसे टावर ऑफ लंदन में रख दिया गया जहां इसे कोई भी देख सकता है। कोहिनूर का मतलब है रोशनी का पहाड़। यह नाम इसे पर्शिया यानी ईरान के बादशाह नादिर शाह ने दिया था, जो इसे 1739 में दिल्ली को बर्बाद करते वक्त लूट कर ले गया था। महारानी विक्टोरिया ने इसे सिख युवराज दिलीप सिंह से लिया। कहते हैं कि आखिरी कट के बाद जब रानी ने बालक दिलीप को इसे दिखाया तो काफी देर तक वह अवाक रह गया। लेकिन आज इसे देखते हुए आम लोगों को ऐसा कोई अद्भुत अनुभव नहीं होता। कोहिनूर के मिथक में ऐसा लगता है जैसा यह एक नया आयाम हो। इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्य के ताज पर सजा वह रोशनी का पहाड़ क्या ब्रेग्जिट के दौर का मामूली हीरा बन जाना चाहता है? जितना अजब यह सवाल है उतना यह भी कि क्यों ग्रेट ब्रिटेन ने अपने लिए ब्रेग्जिट का रास्ता चुना जो शायद उसे बिखरा कर रख देगा। क्या यह इतिहास की अदृश्य ताकतों की साजिश थी या अपने वक्त की कोई महान मजबूरी या महज एक बेवकूफी? यहां और फिर आगे हम इस सवाल का जवाब तलाशेंगे और तब हमारा सामना कुछ ऐसी हकीकतों से होगा जो सिर्फ ब्रिटेन तक सीमित नहीं है। हम खुद को वैश्विक मुद्दों और सबकों से रूबरू होता पाएंगे, लेकिन फिलहाल एक नजर ब्रेग्जिट पर डालते चले। 1973 में ब्रिटेन ने यूरोपीय यूनियन के तब के शुरुआती ग्रुप में शामिल होना तय किया। 1975 में इस पर राय शुमारी हुई तो 67% लोगों ने हां कहा, लेकिन यह एक असहज फैसला था जिसे लेकर ब्रिटिश समाज में लगातार बेचैनी बनी रही। यूरोपीय यूनियन के खिलाफ आवाज उठाने वाली पार्टी यूकेआईपी जोर पकड़ने लगी। जब 2015 का इलेक्शन करीब आया तो एक बार फिर अस्पष्ट जनादेश का माहौल बनता दिखा और तब कंजर्वेटिव पार्टी ने यूकेआईपी के वोट तोड़ने की एक चाल चली। उसने वादा कर दिया कि वह जीती तो यूरोपीय यूनियन से रिश्ते पर राय शुमारी की जाएगी। चुनाव में हैरत अंगेज तौर पर कंजर्वेटिव को बहुमत हासिल हुआ और वादा पूरा करना लाजिमी हो गया। 23 जून 2016 को राय शुमारी की गई जिसमें 48 के मुकाबले 51% लोगों ने ब्रेग्जिट के लिए वोट कर दिया। ब्रिटेन ही नहीं पूरी दुनिया के लिए यह नतीजा किसी भूकंप की तरह था। प्राइम मिनिस्टर डेविड कैमरन ने नतीजों से असहमति जताते हुए कुर्सी छोड़ दी और राजनीतिक उठापटक का लंबा दौर शुरू हो गया। तब से ब्रिटेन की सियासत भयंकर चक्रवात में घूमती रही जिसमें करप्शन और सेक्स स्कैंडल का सिलसिला भी शामिल हो गया। अविश्वास, असमंजस, अनिर्णय और बदहवासी का यह ऐसा दौर है जिसमें किसी को सही सही अंदाजा नहीं कि ब्रेग्जिट का अंजाम क्या होगा। क्या ब्रिटेन की सीमाएं यूरोप के लिए पूरी तरह बंद हो जाएंगी? इतने बड़े व्यापार का क्या होगा जब कस्टम के बैरियर फिर से लग जाएंगे? 27 देशों के बीच मुक्त घूमती आबादी का क्या होगा? ब्रेग्जिट से असहमत स्कॉटलैंड क्या ब्रिटेन से नाता तोड़ लेगा? नॉर्दर्न आयरलैंड का क्या होगा जो बगावत के लंबे दौर के बाद इसीलिए ब्रिटेन के साथ बना रहा कि आयरिश रिपब्लिक के साथ सीमाएं खुल गई थीं? क्या अलगाव के इस झटके और बोझ को ब्रिटेन आर्थिक तौर पर झेल सकेगा और क्या खुद यूरोपीय यूनियन बचा रहेगा? ये सवाल अनुत्तरित हैं और इनसे भविष्य की दुनिया की तकदीर तय होगी। लेकिन यहां हम पीछे देखेंगे और उन धाराओं को परखेंगे जिनसे मिलकर ब्रेग्जिट का समंदर तैयार हुआ और तब यह ब्रिटेन ही नहीं हम सब की कहानी बन जाएगी।